अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लॉट पे, और वो क्या है, फर्स्ट हाफ में हमने सूरत फातिहा मुकम्मल कर ली, माशाल्लाह मुबारक हो। पहले ही दिन आपने एक सूरत शुरू भी की और पूरी भी कर ली। है तो छोटी सी सूरत लेकिन बहुत प्यारी, उम्मुल किताब और बहुत सारे उसके नाम थे, लेकिन फिर कुरान पाक की तवील सूरा सूरत बकरा में से हमने 77 आयात पढ़ी। यहाँ एक सवाल कीजिए खुद से, क्योंकि हमने तज़किया भी करना है, व युज़क्कीहिम, क्या 77 + 7 फायतों ने मेरे अंदर कुछ हल्की सी नरमी पैदा की, गुदास हुआ, दिल की मट्टी थोड़ी नरम हुई? तो अगर नरम हुई तो नरम मट्टी में तो बीज चलता है, अल्लाह की मोहब्बत का, उसके रसूल की मोहब्बत का। तो आइए आयत नंबर 78 से शुरू करेंगे। आज का हमारा गोल पारे के अंत तक है, 78 से लेके 141 तक आयात है। बहुत ही खूबसूरत मौजू है। आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम व मिनहुम मय्यून ला यालमूनल किताब इल्ला अमानिश व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। इनमें से बास अनपढ़ ऐसे भी हैं जो किताब के सिर्फ जाहरी अल्फाज को ही जानते हैं और सिर्फ गुमान और अटकल पर ही हैं। लिख लीजिए, ये उन लोगों का तज़किरा है जो किताब की सिर्फ जाहरी चीज़ों पर गौर करते हैं और उसकी रूह को नहीं समझते। इन लोगों के लिए वईल है जो अपने हाथों की लिखी हुई किताब को अल्लाह ताला की तरफ की कहते हैं और इस तरह दुनिया कमाते हैं। इनके हाथों की लिखाई को और इनकी कमाई को हलाकत और अफसोस है। इसके आगे लिख लीजिए, ये उलमा का गिरोह है। यानी एक ही आयत में अल्लाह ताला ने अनपढ़ आम जो लोग हैं उनकी और इल्म वालों की बात कर दी, और उनको उनके बुरे अंजाम की खबर भी दे दी कि जो अल्लाह की किताब में अपनी मर्जियां डाल के दूसरों को पेश क्या करते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है। और फिर उसके बाद खुश फहमियों की हद देखिए, ये लोग कहते हैं हम तो सिर्फ चंद रोज जहन्नुम में रहेंगे। इनसे कहो क्या तुम्हारे पास अल्लाह ताला की तरफ से कोई इजाजतनामा है? रुकिए, ये कौन है, किसको कहा जा रहा है? इल्म वाले, उलमा, फजला या खतीब, जो अपने आप को तो पक्के जन्नती समझते हैं और उनके साथ फिर ये खुशफहमियां शुरू हो चुकी होती हैं कि हम जहन्नुम में अव्वल तो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि इतना कुरान नहीं पढ़ते, इतना कुरान नहीं पढ़ाते, हाफिज हैं, हमारे यहाँ से इतने लोग मुसलमान हुए, ये हुआ वो हुआ, इस तरह की बातें वो कर रहे होते हैं। हालांकि ये बात अल्लाह ने किसी को खबर नहीं दी, अम्बिया कराम तक बात काफी थी, या किसी नबी की जुबान से किसी के जन्नती या जहन्नमी होने की खबर मिल जाए, बस यहाँ रुक जाइए। इसके बाद उम्मीद कीजिए, दूसरों के बारे में अच्छा गुमान रखिए, दुआ कीजिए गुनाहगारों को देखकर, फासिकीन को देखकर, इवन जो लोग सरेआम बेखुदगी करते उनके लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह इनको जन्नत दे दे। किसी के पास कोई वीजा पासपोर्ट नहीं है कि ये दिखाओ और जन्नत में दाखिल हो जाओ, और अगर है तो यकीनन अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा। यानी तुम में से अगर किसी को कोई मिल गया ना अल्लाह की तरफ से NOC कि आप जो मर्जी करो आज के बाद बदर के लोगों की तरह, तो तुम्हें जन्नत मिलनी ही मिलनी है, तो लाके दिखा दो। हरगिज़ नहीं, बल्कि तुम तो अल्लाह के जिम्मे वो बातें लगाते हो जिन्हें तुम नहीं जानते। मैं आपको एक एक आयत के अंदर का बीच में से पिन पॉइंट दे रही हूँ इस वक्त, इसी मोहब्बत से सुनते रहेंगे तो इसी तरह दूंगी। एक एक कुरान की आयत हमें ये बताती है कि अपने मुंह जितनी बात करो, जितना इल्म है उतनी बात करो, जितना अमल है अपनी उतनी बात करो, दूसरों के बारे में ना फतवे दो ना बदगुमानियां रखो और अल्लाह पे भी झूठ ना बांधो। हाँ, अल्लाह का कानून क्या है, यकीनन जिसने भी बुरे काम किए और इसकी नाफरमानियों ने इसे घेर लिया वो हमेशा के लिए जहन्नमी है। ये अल्लाह की सुन्नत है, एक गुनाह दूसरे गुनाहों को खींच के लाता है, जिस तरह एक नेकी दूसरी नेकी को खींच के लाती है। आप सीढ़ी के एक स्टेप पे चढ़ते हैं तो अगला स्टेप आसान हो जाता है, उस पे जाएंगे तो आसान होगा, बीच में से एक स्टेप निकाल दें तो ऊपर चढ़ना मुश्किल क्या होगा, नामुमकिन होगा। तो हर नेकी दूसरी नेकी का एक संदेशा होती है। दुआ कीजिए अल्लाह किसी नेकी से महरूम ना करे। इसीलिए फरमाया, जो लोग ईमान लाए और नेक काम करें वो जन्नती हैं, जो जन्नत में हमेशा रहेंगे। तो आपका मेरा इससे अमल का नुक्ता क्या निकला, नेकियों की कदर कीजिए, गुनाहों से रुकिए, किसी गुनाह को छोटा ना समझिए, हकीर ना समझिए, और इसी तरह से किसी नेकी को भी छोटा नहीं समझिए। ये सब कुछ आपके मेरे सामने होगा। अब इसके बाद आयत नंबर 83 से ऑनवर्ड तकरीबन 86 तक चार बातें बनी इसराइल के मुतल्लिक हैं। जरा सुनिए, थोड़ा गौर करिए, फिर इंशाल्लाह इन पे तदब्बुर भी करेंगे इन पे। और जब हमने बनी इसराइल से वादा लिया कि तुम अल्लाह के सिवा दूसरे की इबादत न करना और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, इसी तरह कराबतदारों, यतीमों और मिसकीनों के साथ, और लोगों को अच्छी बातें कहना, नमाजें कायम रखना और ज़कात देते रहना, लेकिन थोड़े से लोगों के सिवा तुम सब फिर गए और मुंह मोड़ लिया। ये है जी कौमों का मरस, पिक एंड चूज करते हैं। अल्लाह ताला ने हर दीन में बेसिक सेम रखे, उम्महातुश शरिया कहते हैं उनको, फंडामेंटल्स, यूनिवर्सल ट्रूथ्स कह लीजिए। उसमें सबसे पहले अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी। अल्लाह के सिवा इबादत ना करना किसी की, ये क्या होता है? इसके ऊपर लिखिए इबादत की चार किस्में, जिनको कमोबेश आप और मैं अपनी ज़िंदगी में अगर शामिल कर लें तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरा होता है। पहली किस्म होती है बदनी इबादत, आप जिस्म से जो इबादत करते हैं, बदन से, नमाज, रुकू, सजदा, तवाफ, क़याम वगैरह, इनमें से कोई चीज़ अल्लाह के सिवा इसकी इजाज़त नहीं है। किसी के आगे माथा टेकना शिर्क है, किसी की कब्र पे जाकर रुकू वाली शक्ल इख्तियार करना शिर्क है। दूसरी इबादत होती है माली इबादत, सदका, खैरात, आपका माल कहाँ लग रहा है, हराम चीज़ में 1 रुपया 1 डॉलर भी लगा है ना, तो वो भी गलत चला गया, माल से भी इबादत होती है, इसमें हमारा सारा मामला आ जाएगा। फिर इसके बाद जो अगली चीज़ होती है इबादत में, वो लिसानी इबादत है, ज़ुबान से बात करना, जिक्र, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर, अल्लाह रसूल की तरफ बुलाना, किसी की दिलसोजी करना, रिश्तेदारों की दिलसोजी करना, यानी खैर के साथ किया हुआ कोई भी ऐसा अमल कि जो आप अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, वो सब कुछ इसी के अंदर आ जाता है। और इसी से एक इंसान वाकई महसूस कर लेता है कि मैं अल्लाह ताला के साथ अपने मामले को कैसे दुरुस्त रखूं। ये सब भी अल्लाह के लिए होगा। याद रखिए, आपकी मेरी ज़िंदगी में जितनी तौहीद आती जाएगी, इबादत उतनी बढ़ती जाएगी। चौथी किस्म इबादत की होती है कल्बी इबादत, दिल की इबादत। इसके अंदर अल्लाह से मोहब्बत, अलहुब्बु फिल्लाह वल बुग्ज़ु फिल्लाह भी इसी में ही है, अल्लाह की नाफरमानी या अल्लाह का कुफर या अल्लाह ताला का इनकार करने वालों से बुग्ज़ रखना, चाहे खून के रिश्तेदार क्यों ना हो। फिर इसी तरह तवक्कुल, सब्र। तो ये जो चार किस्में इबादत की है ना, ये सारी इसके अंदर जब आती हैं तो आपको ये बात और समझ आती है कि फिर हमारे सारे जिस्म पर सबसे बड़ा हक अल्लाह का है। दूसरी चीज़ इसमें देखिए, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, उनकी ज़िंदगी में अच्छा सलूक करने की तो 1001 किस्में होंगी, उनके बाद के लिए भी अच्छा सलूक है। फिर इसके बाद देखिए कराबतदार, यतीम और मिस्कीन। अब इतनी बातों के बाद बीच में है वकूलुल लिन्नासि हुस्ना, लोगों से हुस्न अखलाक से बात करना। और हुस्ना वाली बात कौन सी होती है? नरम बात, दिल सोजी की बात, किसी को दिलासा देना, किसी को दीन की दावत दें तो उदु इला सबीली रब्बी का बिल हिकमा की तरह दें, ये नहीं कि डंडा मार कर तबलीग करो और फिर को मानते ही नहीं, सबको कह दो ये सब जहन्नमी है। तबलीग के दौरान ताने मेने नहीं देते, तबलीग के दौरान फतवे भी नहीं देते, वो तो ऐसी है जैसे खाना पका कर किसी को मोहब्बत से खिलाने की कोशिश कर लें, इससे भी ज़्यादा मोहब्बत आप दिखा सके तो दिखा दीजिए। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम क्या था, यहाँ बात करूंगी, जिसमें हम इंशाल्लाह हर पारे में एक मुकाम पे जरूर किया करेंगे, अखलाके नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। याद रखिए, नबी सल्लम पर एक इल्ज़ाम है, आज उसको भी धोना चाहूंगी। लिखिए, वेस्ट ने एक पुकार लगाई कि नबी ने, हम तो नबी कहते हैं ना, वो तो मोहम्मद कहते हैं, हम कहेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने तलवार के जोर पर इस्लाम फैलाया, ये इल्ज़ाम है। अब सीरा पढ़ रहे हैं और जिन्होंने ज़ादुल्खैर के D4 में सीरा का खुलासा लिया है, उनको तो बहुत अच्छी तरह पता चल गया कि आपकी मदनी ज़िंदगी कितने गजवात और जंगों से भरी हुई है, 75+ थे। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि उससे पहले 13 साल तक कुफ्फ अईदियकुम पे अमल किया, कोई तीर तलवार नहीं उठा था। तो जुमला दुरुस्त कीजिएगा, मोहम्मद मुस्तफा सिराज मुनीरा ने हुस्न अखलाक के साथ इस्लाम फैलाया। क्योंकि जो दिलों को फतह कर ले वही फातह जमाना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की गवाही आपके घर से मिलती है। आपकी जौजे मुख्तरमा हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा के अल्फाज सही बुखारी की हदीस नंबर 1 नोट कर लें, जब भी मौका मिले उसको जाकर पढ़ लें। खुलासा क्या है कि नबी सल्लम पर वही का आगाज हुआ सच्चे ख्वाबों के साथ। जो रात को ख्वाब में देखते दिन की रोशनी में वो वही हो जाता। फिर सेकंड स्टेप क्या हुआ, तन्हाई पसंद हो गए, गारे हिरा में खलवत नशीनी शुरू कर दी। कई कई दिन और रात मुसलसल अल्लाह की इबादत के लिए वहां रहते और याद इलाही जिक्र व फिक्र और सबसे बड़ी बात तदब्बुर गौर व फिक्र करते। जब तक घर आने को दिल ना चाहता ना आते, थोड़ा सा तोशा साथ ले जाते। जब वो खत्म हो जाता तो एक मोहब्बत करने वाली एक खूबसूरत बीवी अल्लाह ने आपको दी थी, खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा। और चूंकि वो उम्र में बड़ी थी तो संजीदा थी, फर्क पड़ता है वक्त के साथ मेच्योरिटी आती। छोटी उम्र की लड़कियां पसंद तो लोग बहुत करते हैं, लेकिन याद रखिए वो खिदमत करने से ज्यादा करवाना चाहती हैं, लाड देखने से ज्यादा दिखाना चाहती हैं। खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा को अल्लाह तआला ने एक नपी तुली और बहुत ही जहां दीदा खातून के तौर पर अल्लाह के नबी को क्यों दिया कि आपकी जिंदगी में अब ये बड़े काम आने वाले थे। और याद रखिए जो लोग इन कामों में पड़ जाते हैं ना, फिर उनके पास अपनी जात के लिए वक्त ही नहीं रहता, ना फिक्र रहती ना परवाह रहती ना होश रहती। गम ये होता है कि जिस काम पे लगे उसी पे लगे, फिर दिल जा रहा होता है कि कोई दूसरा कर देगा तो ठीक है, नहीं तो हमें तो इसकी परवाह नहीं। तो हजरत खदीजा आपके लिए खाना लेकर आया करती थी और आपको खाना देती। आज भी हजरत खदीजा के खसाइस बयान करते हुए वो हदीस बयान की जाती है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी को खबर दी थी वो खदीजा आ रही हैं, उनको अल्लाह की तरफ से सलाम कहिएगा। तो यहाँ एक साइड का नुक्ता शोहरों के लिए भी और बीवियों के लिए भी। अगर आपका स्पाउस वाकई अल्लाह के किसी रास्ते में लगा हुआ है, आपकी बीवी कुरान का कोई कोर्स कर रही है, पहले तो स्टूडेंट बनेगी, आजकल दौरे कुरान सुनने आ रही है, आजकल जूम पे 2-2.5 घंटे का एक सेशन सुनती है या उससे भी ज्यादा, आप थोड़े से केयरिंग हो जाइए। ये बीवी जो पढ़ के आएगी ना आपको ही फायदा देगी। अगर आपकी अम्मी कोई काम कर रही है दीन का, तो बेटा आपको अल्लाह ताला इस अम्मी की बरकत से पता नहीं और क्या नहीं दे देगा। और इसी तरह ये पैगाम उन सासों के लिए भी है कि जिनकी बहुएं पढ़ती पढ़ाती हैं। मैं पढ़ने से बात शुरू करके पढ़ाने और एडमिन्स बनने पे करूंगी। आज के दौर में वो लोग नायाब हैं, वो कहते हैं ना कि कहीं कहीं मिलेंगे ढूंढे से अगर देखें जो अल्लाह के दीन की खिदमत करें। और दीन की खिदमत का पहला स्टेप आप लोग हैं जो बैठ के सुन रहे हैं इतने प्यार से। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी प्यारी सिस्टर्स मेरे सामने बैठेंगी और मैं उनको ये दौरे कुरान कराऊंगी। इतनी प्यारी सरजमीन, इतना प्यारा मुल्क, इतने प्यारे आप सारे और इतनी अच्छी जगह जो अल्लाह ने हमें दी, इससे ज्यादा और क्या शुक्र अदा करे बंदा कि 24 घंटे सजदे में सर रख दे फिर भी हक तो अदा ना होगा। तो कोऑपरेटिव बनी। इसी तरह वो बीवियां जिनके शोहर दावत में है या जिहाद पे हैं या वो किसी भी नेकी के काम में, और जो मर्द कमाने जाते हैं वो भी तो नेकी का ही काम है ना, तो हमेशा एक दूसरे के कोऑपरेटिव रहिए। ये हजरत खदीजा की सुन्नत समझकर मैंने आपसे चंद बातें शुरू कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन अचानक जिब्राइल तशरीफ लाए और कहा कि इकरा बिस्मे रब्बी का पढ़िए है मोहम्मद सल्लम। आपने कहा वमा अना बिकारी, मैं तो पढ़ा हुआ ही नहीं हूँ, मैं तो नहीं जानता कैसे पढ़ते हैं। फिर फरिश्ते ने आपको झंझोड़ा, ऐसा झंझोड़ा कि जैसे ताकत जवाब दी जाती। फिर कहा पढ़िए, तो ये अमल होता गया होता गया, बिल आखिर अल्लाह ताला ने आपकी जुबान पे जारी कर दिया इकरा बिस्मे रब्बी का से लेके वो 5 आयात थी। उसके बाद क्या हुआ, जहां से अब आपका ये मौजू अखलाक नबी का समझ आएगा। जब आप वापस गए तो बहुत घबराए हुए थे, ये वाक़यात आपने पहले भी सुने हुए हैं। और हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को कहा कि ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, कहीं आता है दस्सिरूनी दस्सिरूनी, मुझे चादर उड़ा दो मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आपको कंबल उड़ा दिया, इससे आपका डर जाता रहा। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को जब आपने पूरा वाक़या सुनाया तो आपने फरमाया कि खशीत वला नफसी, मुझे अपनी जान का खौफ है, क्योंकि ये अमल ही इतना अनोखा था कि जिसकी पहले से कभी कोई प्रैक्टिस नहीं थी कोई तजुर्बा नहीं था। फिर उन्होंने आपकी ढारस बंधाई। और सुनिए वो जुमले जो आपको मुझे अपने लिए नोट करने हैं। हजरत खदीजा ने फरमाया आपका ख्याल सही नहीं है, अल्लाह की कसम, आपको अल्लाह कभी रुसवा ना करेगा। आप तो इखलाक के फाजिला के मालिक हैं, आप तो कुंभा परवर हैं, यानी अपने खानदान का ख्याल करते हैं। आपका अखलाक कितना प्यारा है, बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं, मुफलिसों के लिए आप कमाते हैं, मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं, और मुश्किल वक्त में आप अमरे हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफे हसना वाला इंसान यूं बे बुक्कत जिल्लत व ख्वारी की मौत नहीं पा सकता, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल की गहराई से कह, इस तरह कुरान में जितनी दफा नबी पे प्यार है, खामोशी से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद इतना भी कह दे। आपको तो मुख्तसर तवील दरूद भी है, वो भी सारी चीजें आप सीखेंगे आगे जाके। तो अल्लाह के नबी पे मोहब्बत डालें। अब देखिए बीवी की ये गवाही कितनी बड़ी है, घर के फर्द जो होते हैं वो सबसे बड़े गवाह होते हैं। तो ये बात आपको क्या सिखाती है कि अल्लाह के नबी का अखलाक बहुत प्यारा था। यही गवाहियां अगले अदवार में आपके अजवाज से भी मिलती हैं। जब एक मौके पे आपने अपनी बीवियों से हीला किया और कहा कि जाकर मशवरा कर लो मेरे बारे में, मेरे साथ रहना है तो ऐसे ही रहना पड़ेगा तंगी तुर्शी में, और छोड़ना है तो छोड़ दो, तो सब ने क्या कहा था, जिसमें सबसे पहले आयशा सिद्दीका थी, कि मैं आपके बारे में किसी से क्यों पूछूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए। और फिर यही जवाब सबका था। तो याद रखिएगा, मेरी आपकी सबसे बड़ी गवाही मेरे घर वाले देंगे, मेरे साथ वाले देंगे, मेरे साथ काम करने वाले देंगे। कभी दिल बड़ा करके पूछिए तो सही, आप मुझसे खुश हैं, मैं कैसी माँ हूँ, बच्चों से पूछें, मैं कैसी सास हूँ, मैं कैसी बहू हूँ, मैं कैसी मालकन हूँ, पूछिए, फिर देखिए आपका दिल गवाही देगा आप कैसी हैं। और नबी से हमने यही सीखना है, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन। आइए अब इन आयात यानी 77 से 83 पे तदब्बुर और अमल के नुक्ते नोट करते हैं। पहली बात यह कि कुरान करीम को तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ना है। बोलिए इंशाल्लाह, शुरू से कहना शुरू कर दें, ताकि इस दौरे कुरान के साथ ही फिर आपका तफसीर कोर्स बिलुल जन्ना भी अल्लाह के यहाँ मंजूर हो जाए। दूसरी बात, कुरान करीम के तमाम अहकाम पे अमल करना है, पिक एंड चूज नहीं करना। अफतू मेनून अभी बात दिल किताबी वाली बात पे, यानी रंग बिरंगा मुसलमान नहीं बनना, जो चीज़ आसान लगी वो ले ली, जो मुश्किल लगी छोड़ दी। पिछली कौमों का यही हाल हुआ था। आप पुलाव की कोई रेसिपी लें और उसमें सिर्फ अपनी पसंद की चीज़ें नोट कर लें और बाकी छोड़ दें तो पुलाव बनेगा? हर स्टेप फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह दीन पूरे का पूरा मानना पड़ेगा, और आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ फिर आपको आसान से आसान लगेगी। वालिदैन और रिश्तेदारों से उसने सलूक करना है। कुरान पाक से रहनुमाई कैसे लेनी है? अल्लाह ताला जाहिर व बातिन सबसे बाखबर है, इसलिए अपने बातिन की इसलाह करते रहना है। अजाब को हल्का समझना दिल की सख्ती और गुनाहों में बढ़ने का सबब होता है। तो अपने आप से पूछिए, मैं अजाब को हल्का तो नहीं समझती, ये कहकर देखा जाएगा, कुछ नहीं होगा, ये कहना ही दिल की सख्ती की अलामत है। मोमिन तो छोटी सी बात पे कांपने लगता है। वालिदैन रिश्तेदारों यतीमों और मिसकीनों के हकूक का ख्याल रखना है। गौर व फिक्र के गोशे अच्छे अखलाक की फजीलत पता चली, लिहाजा अपना अखलाक बेहतर करना। अच्छी और भली बात कहने का हुक्म सुना, तो हमने भी अपनी बात को कूल उल नास ही हुस्ना फैलाना है। अपनी टोन को ठीक करें, अपने अंदाज से तंस निकाल दें, इल्जामात निकाल दें, बोहतानबाजी निकाल दें, चीखना चिल्लाना निकाल दें, और जो भी नेगेटिव चीज़ जो आपको अपने लिए बुरी लगती है वो दूसरों के लिए भी उसको निकाल दीजिए। इसी तरह कौली और फेली नेकी दोनों को एहसान से करना है, यानी बातें भी करनी है अच्छी और अमल भी अच्छे करने हैं। कुरान पाक के अहकामात को जानबूझकर बदलने से बचना है। अल्लाह ताला मेरे आपके लिए आसान कर दे, आमीन। चलिए आगे देखते हैं आयत नंबर 84 से 88। वही सख्स नमी साकुम ला तस्फिकून दिमा अकुम वला तुखरिजून अनफुसकुम। और जब हमने तुमसे वादा लिया कि आपस में खून ना बहाना, कत्ल ना करना और आपस वालों को जिला वतन मत करना, तुमने इकरार किया और तुम इसके शाहिद बने, लेकिन फिर भी तुमने आपस में कत्ल किया और आपस के एक फिरके को जिला वतन भी किया, और गुनाह और ज्यादती के कामों में इनके खिलाफ दूसरे की तरफदारी की। हाँ, जब वो कैदी होकर तुम्हारे पास आए, तुमने इनके फिदिये दिए, लेकिन इनका निकालना जो तुम पर हराम था, इसका कुछ ख्याल ना किया। अफतू मेनू नबी बात दिल की ताबी बतक फुरू नबी बात, क्या बाज़ अहकाम पर ईमान रखते हो और बाज़ के साथ कुफर करते हो? तुम में से जो भी ऐसा करे, इसकी सज़ा इसके सिवा क्या हो कि दुनिया में रुसवाई और क़यामत के सख्त अज़ाब की मार। और अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं? ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को आखरत के बदले खरीद लिया। ना तो इनके अजाब हल्के होंगे और ना इनकी मदद की जाएगी। हमने मूसा अलैहि सलाम को किताब दी और इनके पीछे और रसूल भेजे। हमने हज़रत ईसा इब्ने मरियम को रोशन दलीलें दी और रूहुल कुदस से इनकी तायद करवाई। लेकिन जब भी कभी, इस पे गौर कीजिएगा, अफकुल्लमा, और लेकिन जब भी कभी तुम्हारे पास रसूल वो चीज़ लाए जो तुम्हारी तबीयतों के खिलाफ थी, तुमने झट से तकबर किया, बस बास को तो झुटला दिया और बास को कत्ल कर डाला। इस नुक्ते पे गौर कीजिएगा, लोगों को रसूलों का पैगाम बुरा नहीं लगता, लेकिन रसूलों की वो बात बुरी लगती है जो उनके अपने नफ्स के खिलाफ होती है। इश्तगा, याद रखिए, एक चीज़ है शहवात और एक है शुबहात। इन दो चीज़ों ने बहुत सारे लोगों को दीन से दूर किया। शहवात के लस्ट, ब्रांड्स, मॉडल्स, ये कैसा वो कैसा, यानी वो चीज़ें जिसमें ख्वाहिश है, हर ख्वाहिश के अंदर से एक और ख्वाहिश सर उठाकर कहती है मुझे भी पूरा करो। और शुबहात क्या होते हैं? शुबे, डाउट्स, डाउट्स एंड कह लीजिए कि लस्ट। ये दो चीज़ें बहुत सारे लोगों को अल्लाह से दूर करती हैं। अल्लाह ताला आपको मुझे इन सारी चीज़ों को जानते हुए पढ़ते हुए अपनी इस्लाह की तौफीक दे और हम हकीकत में अपने बारे में ये जाने कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी ख्वाहिश है जो मुझे हक से रोकती है। खुद से पूछिए, कौन सा अल्लाह का हुक्म है जो मुझे नहीं समझ आया आज तक, चाहे 20-21 दौरे कुरान सुन सुना लिए। ऐसा भी मैंने देखा है, कुरान पढ़ना तो छोड़ दीजिए, पढ़ाना शुरू कर देते हैं लोग। किसी एक खास चीज पे अमल नहीं है तो नहीं, नहीं दिल ठुका नहीं, अगली दफा पढ़ेंगे बात समझ भी आ जाती, फिर कहते छोड़ो वो फलां नहीं है, वो देखो बगैर निकाब के पढ़ाती हैं, कोई बात नहीं कुरान ही पढ़ा रही है ना, वो फलां कहते थे निकाब नहीं है, वो फलां कहते नहीं मेकअप भी कर लो कुछ नहीं होता, अल्लाह माफ करने वाला, नहीं, हमने तो थोड़ा सा किया है, हमने तो ये कर दिया। यानी एक एक करके लोगों के अंदर तब्दीलियां आने लगती हैं। तो ये वो चीजें हैं जो इंसान को पीछे करती हैं। और फिर होता क्या है, जब बार बार किसी चीज को रिजेक्ट करेंगे ना तो तौफीक छिनती है। मैं आपको कंप्यूटर से एग्जांपल देती हूँ, जब आप काम करते हैं ना, कोई आपके सामने विंडो खुलती है, पॉपअप होता है, कोई मैसेज आता है, कोई रिमाइंडर है, कोई भी नोटिफिकेशन है, अगर आप उसको थोड़ी देर तक क्लिक ना करें ना तो गायब हो जाता है। गाड़ी में बैठते हैं सीट बेल्ट नहीं बांधते कई लोग, तो टी 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 करती रहती है, थोड़ी देर बाद बेचारी चुप कर जाती है। हिदायत भी एक इसी तरह का नोटिफिकेशन है। आप जब भी गलत रुख लेंगे ना गाड़ी की तरह, तो वो आपको फौरन कहेगा टेक अ यू टर्न, स्टॉप हेयर, तुम गलत जा रहे हो, तुम्हारा रॉन्ग वे है। और अगर थोड़ी देर तक आप उसको रिस्पॉन्ड ना करें तो वो चला जाता है। इस कैफियत को अल्लाह ने क्या कहा, सुनिए, ये कहते हैं हमारे दिल गिलाफ वाले हैं। नहीं, बल्कि इनके कुफर की वजह से इन्हें अल्लाह ताला ने मालून कर दिया, इनका ईमान बहुत ही थोड़ा है। ये है जिलानत, दिल से हिदायत की तौफीक छिन जाना, ये लानत है, ये गिलाफ है। हाथ पे वैक्स लगा लें तो ऊपर पानी भी लगाएंगे तो नहीं चलेगा, कुछ भी करेंगे तो नहीं होगा। इसी तरह जब दिलों पे मोहब्बतों का वैक्स चढ़ जाता है, दुनिया की ख्वाहिश परस्ती आ जाती है, तो सारा कुरान पढ़ पढ़ा कर भी इंसान नहीं मानता। तो आइए देखते हैं IT 488 पे तदब्बुर के नुक्ते। पहली बात, आयात पर अमल क्या है, क्योंकि इसमें कैदियों को आज़ाद कराने की बात हुई है, तो किसी बेगुनाह कैदी को जिसको आप जानते हो कुछ माल खर्च करके रहा कराने की कोशिश कीजिए या सिफारिश कीजिए। आज भी ऐसे कई कैदी मौजूद हैं जेलों में जिनके लिए इंसान कोशिश कर सकता है। चूंकि इसमें कूलु लिन्नासि हुस्ना की बात हुई, तो दूसरा अमल का नुक्ता नोट कीजिए, साथियों की एक ड्यूटी लगाएं। बड़ी गौर से सुनने की बात है, अपनी दोस्तों में से किसी दोस्त को कहिए मुझे कोई अच्छी नसीहत करो। फिर जब वो आपको नसीहत कर रही हो तो उस वक्त अपने दिल का जायजा लें कि मुझे बुरा लग रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मेरी अन्ना पे चोट पड़ रही है, या मैं खुश हो रही हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतनी अच्छी दोस्त दी जो इतने अच्छे अंदाज से मेरी इसलाह फरमा रही है। तो ये टेस्ट आपको इंशाल्लाह दिखाएगा कि आपके अंदर अन्ना का दर्जा कितना बड़ा हुआ है। फिर अगली बात है कि जब अल्लाह ने शरीयत दी तो उसको मानिए, تردیت باللہ ربم وبالاسلام دینم وبی محمد النبیین. اس کو کثرت سے زبان پہ رکھیے. آپ کو شریعت بھی اچھی لگنے لگ جائے گی کیونکہ آپ اللہ کی رضا پہ راضی ہیں. اب اللہ نے سود کو حرام کہا ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا. اللہ نے آپ کو لباس حجاب کے تقاضے پورے کرنے کا حکم دیا تو ماننے پڑیں گے. حرام سے اللہ نے روکا آپ کو ماننا پڑے گا. تو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے تقدیری فیصلوں پہ بھی راضی ہونا ہے اور شریعت کے فیصلوں پہ بھی راضی ہونا ہے. پھر قرآن پاک سے رہنمائی کے نکات لیجئے. مومن کی خوشی دوسرے کو خوش جبکہ غم دوسرے کو غمگین کرتا ہے. مسلمان جو ہوتے ہیں نا وہ ایک خاندان ایک فیملی کی طرح ہوتے ہیں. کسی ایک کے گھر میں تکلیف آتی ہے نا سب دکھی ہوتے ہیں, کسی ایک میں خوشی ہوتے ہیں تو سب خوش ہوتے ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ آج ہم یہ بھی چیزیں رسمن کرتے ہیں. ہائے اب مبارک دینے جانا پڑے گا, ہائے اب شادی میں جانا پڑے گا. کئی دفعہ بڑے اوپر سے منہ سے کہتے ہیں مبارک ہو بڑی خوشی ہوئی, اندر سے دل کٹ رہا ہوتا ہے ان کا ادھر رشتہ کیوں ہو گیا. شادیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اور ان کی چیزوں کو دیکھ کے جل کڑ رہے ہیں, بدگمانیاں کر رہے ہیں. حرام کا ہی پیسہ ہوگا جو اتنا لٹا رہے ہیں. لوگ آپ کو ساتھ ساتھ قسم کے کھانے کھلا رہے ہیں, آپ انہی کے بارے میں بدگمان ہیں. ایسا نہ کیجیے. اخلاق نبوی کیا ہے؟ کہ مومن مومن کے لیے خوشی کا ذریعہ بنے آئینے کی طرح. آئینہ آپ کو آپ کے داغ دکھاتا ہے, دوسروں کو نہیں دکھاتا. میرے چہرے پہ اگر داغ ہے تو آئینے میں مجھے دکھے گا نا, آئینہ مجھے دکھائے گا کہ آپ کو کہ میں ہٹ گئی اور آپ کو دکھائے. یاد رکھیے شیطان کا بہت بڑا شوشہ ہے. نیکی کے نام پہ نیکی کا کام سمجھ کے جذبہ حمیت اسلام سمجھ کر دوسرے کو بدنام کرنا, اس کے بارے میں غلط چیزیں معروف کرنا اور صرف اپنے گمان کے مطابق دوسروں کو چلنے پہ مجبور کرنا. یہ آیتیں آپ کو مجھے اس پہ سوچنے کی دعوت دیتی ہیں. آئینے نے مجھے بتا دیا کہ تمہارے چہرے پہ داغ ہے. آئینہ کیا کرے گا؟ اب جا کے زبردستی میرا منہ صاف کرے گا؟ دوسروں کو چھوڑ دیجیے. آپ نے اگلے کو بتا دیا نا کہ آپ کی یہ چیز غلط ہے, اگلے میں عقل سمجھ شعور ہوگا وہ مان جائے گا. اور اگر وہ نہیں مانتا تو وما علینا الا البلاغ المبین. آپ کو مجھے حق نہیں ہے کہ کسی کے کردار پہ ایک غلط لفظ بولیں. یاد رکھیں ساری زندگی کی تہجدیں تراویاں نمازیں اور حفظ اور سارے مراقبے اور ساری تبلیغ ضائع ہو جائے گی. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ تعلق اللہ کی نگاہوں میں اتنا بڑا ہے. صاف کپڑے کو جس پہ داغ آ گیا گندے کپڑے سے صاف کریں گے تو چھوٹا سا کھانے کا داغ سارے ٹیبل پہ پھیل جائے گا. گندگی کو صاف کپڑے سے صاف کرتے ہیں. لا یحب اللہ الجہر بالسوء. اللہ تعالیٰ ہمارا دل کھول دے. پھر اگلی بات لکھیے, ایمان دین پر مکمل رضامندی کا دوسرا نام ہے. میرے تو دل پہ یہ تعریف لکھی ہوئی ہے ایمان کی. دل میں کوئی ریزنٹمنٹ نہیں, کوئی کوشچن نہیں ہے. اللہ آپ نے یہ کیوں کیا, آپ نے کیا کر دیا, کیوں مجبور کیا, پانچ نمازیں پڑھیں وقت ہی نہیں ملتا. نہیں, اللہ جو آپ کو پسند وہ مجھے پسند ہے. آپ کا ایمان جو ہے نا آپ کو امن دیتا ہے, پیسفل بناتا ہے. اللہ نے جو دیا میں خوش ہوں, جو نہیں دیا میں اس پہ بھی خوش ہوں, جو دے کے لے لیا اس پہ اور بھی خوش ہوں. اللہ کہتا ہے تم جاؤ میں جاؤں گی, اللہ کہتا ہے رک جاؤ میں رک جاؤں گی. دیکھیے ہماری زندگی میں کتنے انیوژل واقعات نہیں آتے. ہم کچھ اور سوچتے ہیں, اللہ کچھ اور کرتا. کہہ دیجیے ٹھیک ہے, آپ کے ہائی یہ کیوں, پھر کوستے, پھر لوگ لڑتے کیوں کیا, آپ کی وجہ سے ہوا, تم نے یہ کرایا تم نے کرایا. رضیت باللہ ربا, انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یہ پڑھیے. جب آپ کو کوئی ایسے حالات سامنے درپیش ہو جس کو آپ چینج نہیں کر سکتے, جس میں آپ کا کوئی قصور ہے بھی تو تھوڑا ہے چلے, یا نہیں بھی ہے تو ایکسیپٹ اٹ. اللہ سے لڑتے نہیں ہیں, تقدیر کے فیصلوں پہ نہیں لڑتے. آپ یہ میری بات سن لیں, آپ میں سے آدھے لوگوں کا اگر ہے بھی نا تو ٹینشن لیول ختم ہو جائے گا, سٹریس ختم ہو جائے گا. ہماری ساری لڑائی اسی چیز کی ہے, ہم قبول نہیں کرتے. لکھیے وائی می ایٹیچیوڈ, یہ بے چینی دیتا ہے. پھر اگلی بات دیکھیے کہ جو اپنے دین میں امانت دار نہیں وہ تو پیمان اور دوسرے امور میں کیوں کر امانت دار ہوگا. تو دین کا کام امانت داری سے کریے. آپ سننے بیٹھے پورا پوچھ لیجئے لوگوں سے کہ یہ جو پڑھانے آئی ہیں یہ کون ہے. آپ میں سے تو 80% کے لیے میں نہیں ہوں, اور ماشاءاللہ آپ سارے ہی کہتے ہیں ہم اسٹوڈنٹ ہیں, دوسرے بھی کہتے ہیں, وہ آپ کی مرضی ہے. مجھے تو آپ سب نہیں لگتے, میں تو اس شہر میں کسی کو جانتی بھی نہیں تھی دو تین ناموں کے سوا. مجھے کیا پتا کہ ادھر اتنے اسٹوڈنٹ ہیں. اللہ کی توفیق رحمت ہے تو پوچھ کے بیٹھے. آپ کے دل جم گئے ہوئے, ایس اے کر رہے ہیں, این این کر رہے ہیں, آپ کو یقین ہے کہ نور القرآن سے ہمیشہ قرآن سنت کی بات ہوتی ہے. تو بس مجھے پھر کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں, کیونکہ جو پورا کھانا کھا رہا تھا اسی کو پورا پتہ ہوتا ہے. کوئی ایک راستے سے چپکتا ہوا جملہ کوئی لے جائے دے جائے, مجھے اس کی کیئر نہیں ہے, مجھے اس کی پرواہ نہیں. مجھے پرواہ اس بات کی ہے کہ اللہ میری اس ساری کوششوں کو قبول کرے और आप जो पढ़ते हैं उनकी ज़िंदगियों में तब्दीली आए। तो लिहाजा दीन का काम अमानतदारी से कीजिए, फिर गौर व फिक्र के गोशों में लिखिए, अहकामात पर अमल और ममनू चीज़ों से बचना ईमान का तकाजा है। अल्लाह मुझे आपको इस तकाजे को पूरा करने वाला बना दे। अल्लाह दीन के काम करने वालों की मदद अपने फरिश्तों से कराता है। एक है कि आप अपने बारे में सोचने लग जाएं, अपनी फिक्रें, मेरा खाना, मेरे घर, मेरे फलां, हाय मुझे कोई क्या कह रहा है, मेरे बारे में क्या राय है, तो मैंने दीन का काम कहाँ करना है। और एक है मैं कहती अल्लाह मेरे पास तो वक्त ही नहीं है, तू खुद ही कर ले। उफविद उमरी तफवीदुल अमर, अल्लाह मेरा सारा तेरे ऊपर है, अल्लाह तू जान, तू नहीं बढ़। फिर जो अल्लाह करता है ये कोई सोच भी नहीं सकता। अल्लाह ने प्यारे नबी सल्लम सिराज मुनीरा के दुश्मनों के साथ जो किया वो कोई नबी कर सकते थे? मूसा अलैहि सलाम के दुश्मन को जो समंदर में डुबोया, अल्लाह के नबी ये काम कर सकते थे? इतनी ताकत थी मूसा में कि फिरौन के लिए पानी को इस तरह कर दे? आग को ठंडी कर सकते थे इब्राहिम? तो बस ईमान पैदा कीजिए, बाकी काम अल्लाह पर डाल दे। मुहासिब बनिए, अल्लाह की नजरों में रोज रो के सोएं कि अल्लाह मैं गलत तो नहीं हूँ, मेरी नीयत तो नहीं खराब, बद नीयत तो नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं आ रही, कोई वद्दुलौतुदखिनुफयुदखिनून की कैफियत नहीं है। और जब वहां गहरा सुकून मिले तो ठंडा दूध पी के सो जाए। फिर अगली बात नोट करें, हक को छुटलाने वाले अल्लाह की रहमत से दूर हो जाते हैं। और पता कैसे? फिर उनको हक नहीं नजर आता, हक बातिल, बातिल हक, सच्चा झूठ, झूठ सच, उनका अपना एक माइंडसेट बनता है। ऐसे जैसे इस वक्त सब कितना अच्छा रूम दिख रहा है, लेकिन मैं ग्रीन कलर के ग्लासेस पहन लूँ मुझे हर चीज़ ग्रीन दिखेगी। तो अल्लाह से दुआ करिए कि अल्लाह ताला अगर हमारे दिलों में कोई शक आ चुके हैं, कोई शुबहात आ चुके हैं, तो अल्लाह ताला उसको दूर कर दे। फिर ख्वाहिशात जो खैर और भलाई से खाली हों वो इंसान को जहन्नुम की तरफ धकेलती हैं। आपने इन आयतों में लफ्ज़ हवा सुना है, हवाएं उड़ने वाली चीजें, उड़ना, और हवा ही ख्वाहिश है, यानी ख्वाहिशें बंदों को ऊपर ही उड़ाती रहती हैं, बेसलेस काम करता रहता है और काम का कोई काम नहीं, वक्त का कोई हिसाब नहीं, घंटों बेकार तकरीबात में लगा रहे हैं, पैसे का तो कोई हद ही नहीं। एक जोड़ा, एक नजर, एक दफा लोगों के मुंह से ये सुनना है बहुत अच्छी लग रही हो, लाख रुपए, 2 लाख रुपए का मेकअप है, ये जोड़ा किस ब्रांड का है? मैं पर्पसली लोगों के ब्रांड को कभी डिस्कस नहीं करती, और जिसको मैं ब्रांड कॉन्शियस देख लूं मैंने कभी उनके जोड़े की तारीफ नहीं की। जिनको मैं देखूं कि ये इसराफ करके इतना सच संवर के हैं, मैंने कभी नहीं कहा बहुत प्यारी लग रही हैं। मेरा ये जुमला भी एक खामोश सपोर्ट बन जाए कि वो अगली दफा और भी तैयारी होंगी। मैं गई थी, मुझे सब ने कहा तुम तो पहचान ही नहीं जा रही। अब सुनिए, जब कोई किसी को कहे आज तो पहचान ही नहीं जा रही, ये तारीफ है कि बुराई है? अल्लाह अकबर, आप खुद ही समझ गए हैं कि आप वैसे तो बड़ी खराब थी, आज बड़ी खूबसूरत हो गई। मत बोलिए ऐसे जुमले। चलिए आगे चलते हैं, आयत 89 से 93। वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा मअहुम, अब इसको भी सुनिए, इसमें भी बहुत गौर के नुक्ते हैं। और इनके पास जब अल्लाह तआला की किताब इनकी किताब को सच्चा करने वाली आई, हालांकि पहले वो खुद इसके जरिए काफिरों पर फतह चाहते थे, तो बावजूद आ जाने और बावजूद पहचान लेने के फिर कुफर करने लगे। अल्लाह की लानत हो कुफार पर, बहुत बुरी वो चीज़ है जिसके बदले उन्होंने अपने आप को बेच डाला, वो इनका कुफर है। नोट करिएगा, कुफर, कुफर अल्लाह तआला की तरफ से नाजिल शुदा चीज के साथ महज इस बात से जलकर कि अल्लाह तआला ने अपना फजल जिस बंदे पर चाहा नाजिल फरमाया, इसके बाद ये लोग गजब पर गजब के मुस्तहिक हुए और इन काफिरों के लिए रुस्वा करने वाला असाब है। नोट कर लीजिए, कभी किसी फजल वाले को देख के हसद ना करें, कभी किसी दौलत वाले को देख के हसद ना करें, किसी इल्म वाले को देख के हसद ना करें, किसी को शोहरत मिल गई उस पर हसद ना करें, किसी का शौहर उससे बहुत मोहब्बत करता है इसको देख के हसद ना करें। इसीलिए कहा गया इन सब चीज़ों को छुपाओ भी। आज लोग एक्सपोज करते हैं, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे इस मौके पे दिया, ये मुझे उस मौके पे मिला, आज ये खाया है मियाँ साहब ने, ये दिलाया, मुंह दिखाई में ये मिला, क्या जरूरत है? याद रखिए, कुल्लु ज़ी नेमतिन महसूद, हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। तो आपका मेरा काम क्या है कि अगर अल्लाह ने हमें नेमतें दी हैं तो छुपाइए, और अगर दूसरों को दी है तो उसके ऊपर माशाल्लाह कह दें, अल्लाह बारिक की दुआ दे दें। और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह तआला की उतारी हुई किताब पर ईमान लाओ, तो कह देते हैं जो हम पर उतारी गई इस पर हमारा ईमान है, हालांकि इसके बाद वाली के साथ जो इनकी किताब की तस्दीक करने वाली है कुफर करते हैं। यहाँ देखिए फिरका वारियत, यहूदियत और नसरानियत, ये दो फिरके हैं, ये दो मजहब नहीं है, ये दो डिविएटेड ग्रुप्स के नाम है, क्योंकि अल्लाह ने ये दोनों नाम नहीं दिए, हजरत ईसा के फॉलोअर्स अपने दौर में मुसलमान कहलाते थे। हजरत मूसा से लेकर ईसा के बीच के सारे लोग, जिनको कुरान तीसरी दफा बनी इसराइल के नाम पे इस बारे में भी पुकारने वाला है, वो भी सब और अहले किताब और बनी इसराइल कहलाते थे। ये बाद के नाम है। जैसे आज उम्मत मुस्लिमा में बहुत सारे नाम मुतारिफ हो गए जो अल्लाह के नबी और सहाबा की जिंदगी में थे ही नहीं। तो आपका मेरा मनहज क्या है? काल अल्लाह व काल रसूल। हम कौन है? हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। इसी की जंग सारी दुनिया से लड़ने को तैयार है कि अगर नाम किसी कौर का रखना होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रखते, हम मोहम्मदी कहलाते, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं है, हम अबू बकरी कहलाते, उमरी, उस्मानी, कोई भी नाम रख लीजिए। नहीं, हम कौन है? हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन। क्योंकि अब इसके आगे पारे में जो बातें आने वाली है ना, ये फिरकावारियत की बातें हैं, यहाँ भी समझ लें। आप कुरान को रियल टेक्स्ट के साथ समझ रहे हैं इस वक्त? सारे इर्द गिर्द के फिरके, साबके, लाख के, जमाते, गिरोह बंदियां खत्म हो जाती हैं उसकी जिसको कुरान समझ आता है। इसीलिए शैतान लोगों को कुरान नहीं पढ़ने देता। बैठ के 100 दानों की तस्बीह पे ये पढ़ लो, 500 दाने का ये कर लो, 1,25,000 बार ये कर लो, ये महफिल से जा लो, ये कर लो, उम्रे पे उम्रा कर लो, हज पे हज कर लो, ये एहसान करता है, कुरान नहीं पढ़ने देता। और बाज तो इससे बढ़कर क्या कहते हैं, ये औरतों के तो पढ़ने का काम ही नहीं, ये औरतें कैसे पढ़ेंगी, और कुरान पढ़ने से तो हम बहक जाएंगे। नऊज़ु बिल्ला। ये सारी चीज़ें अल्लाह सुबहाना ताला ने यहाँ पेश करके आपको मुझे क्या बता दिया? जो कुरान पढ़ लेता है उसका कोई फिरका नहीं रहता, वो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे पे चलने के लिए तैयार हो जाता है। तो लिहाजा फिर गौर से सुनिए, और जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ताला की उतारी हुई किताब पर ईमान लाओ, तो कह देते हैं कि जो हम पर उतारी गई इस पर हमारा ईमान है। हालांकि इसके बाद वाली के साथ जो इनकी किताब की तस्दीक करने वाली है, कुफर करते हैं। अच्छा, इनसे ये तो पूछिए, अगर तुम्हारा ईमान पहली किताबों पर है तो फिर तुमने अगले अम्बिया को क्यों कत्ल किया? यानी तुम हमारी किताब पे चलो अमल ना करो, हम मान रहे हैं, अपनी पे तुम कौन सा करते हो? ये भी लिख लें। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए अमल नहीं करते कि जी हम फलां ग्रुप को फलां टीचर को नहीं मानते, तो जिनके पास जाते हैं उनकी कौन सी सारी बातें मानते हैं? तो असल में अमल से हटने के ये सारे रास्ते हैं। कहा इनसे को, तुम्हारे पास तो मूसा अलैहि सलाम यही दलीलें लेकर आए थे, तुमने फिर भी बछड़ा पूजा, तुम हो ही सालिम। जब हमने तुमसे वादा लिया और तुम पर तूर को खड़ा कर दिया और कह दिया कि हमारी दी हुई चीज को मजबूत थामो और सुनो, तो उन्होंने कहा समेना वासईना, इसको लिखिए समेना वासईना, हमने सुना और नाफरमानी की। समेना व असईना वाला रवैया आज उम्मत मुस्लिमा में से अक्सरियत का है, जबकि सहाबा ने क्या कहा था? तीसरे पारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सूरत बकरा के आखिर में, समेना व अतवाना। अब आप और मैं अपना जायजा ले लिखिए एक सवाल, जब कुरान का कोई हुक्म आता है सामने, जब रसूलुल्लाह का कोई फरमान मेरे सामने आता है, तो मेरा रवैया समेना व असईना वाला होता है या समेना व अतवाना वाला? सुनकर मानती हो या सुनकर छुटला देती हो? और कौन छुटलाता है उसकी वजह? और इनके दिलों में बछड़े की मोहब्बत गोया पिला दी गई, बस अब इनके कुफर के, इनसे कह दीजिए कि तुम्हारा ईमान तुम्हें बुरा हुक्म दे रहा है अगर तुम मोमिन हो। ये है जी बछड़े, नाफरमानियों के बछड़े, ख्वाहिश परस्तियों के बछड़े, दुनिया परस्ती के बछड़े, खानदान परस्ती के बछड़े। ये जो बछड़ा है ना, इसको ढूंढिए, ये एक सिंबल है। इधर वो श्रीबू का लफ्ज बता रहा है कि डीप डाउन लव है, पिलाई गई, पिला दें कोई चीज किसी को तो वो जिस्म के एक एक रग रेशे में पहुंच जाती है। पानी पीते हैं पूरी जगह पे चला जाता है, सूखी चीज जहां पड़ी रहे पड़ी रहती है। तो इधर क्या गौर का नुकता है आपका मेरा, आइए देखते हैं। तदब्बुर वाल अमल में 89 से 93 पर आयात पर अमल, अल्लाह के फजल वालों से हसद करके अल्लाह को गजब में नहीं लाना। देखिए, जब किसी को अल्लाह कुछ दे दे जो आपके पास नहीं है, ये किसका फैसला है? अल्लाह का। तो क्या आप अल्लाह के फैसले से नाराज हैं? तो अल्लाह से कहे, अल्लाह मेरे दिल से खुरच के भी निकाल दे अगर मेरे दिल में किसी के लिए कोई हसद या रकाबत है। दूसरी बात, तवाज़ो और आजजी भलाई की कुंजी है। अल्लाह ताला से तौफीक मांगिए कि ये कुंजी मुझे मिल जाए। आजिज बन के रहिए, लो प्रोफाइल पे काम करें, डाउन टू अर्थ रहें, मेरा काम क्या है कि इस वक्त अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आपने मुझे एक अच्छी मुनासिब जगह दी है, तो आपके जाने के बाद ये सारी कुर्सियाँ मैं खुद उठा लूँ। आपके छोड़े हुए टिश्यू पेपर अगर कोई होंगे तो मैं उठा दूँ, मैं आपके जगह को साफ कर दूँ। कोई मुझे अकड़ नहीं आनी चाहिए कि मैं तो टीचर हूँ, तो टीचर का क्या काम है, लोगों के सामने बस नेकियां करना। तो हमेशा लोगों की गैर मौजूदगी में कोई ऐसी नेकी कीजिए जिससे आप अल्लाह को दिखा सकें कि अल्लाह मैं आपके लिए कर रही हूँ। दूसरी बात है, आपके अंदर अना नहीं आएगी, अकड़ नहीं आएगी। जब बहुत लोग आपकी तारीफें करते हैं ना, तो कभी बंदा उनकी बातों में सोच लेता है कि मैं अच्छा ही हूँ, तभी तो सब कहते हैं, तो किसी एक को इजाजत दे दिया करें कि वो आपको बुरा कहे। और कभी कभार उसकी बात पढ़कर अपनी औकात रखें कि नहीं तुम इतनी अच्छी भी नहीं। याद रखिएगा कि ये सख्त टेस्ट होते हैं, लेकिन अल्लाह उसके लिए नरम करते हैं जिसके अंदर आजजी है। और अल्लाह के नबी की जुबान अतर से निकले हुए अल्फाज का खुलासा है कि जो अल्लाह के लिए आजजी इख्तियार करेगा, अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा देगा। फिर उसके बाद एक दुआ मैं आपको सिखाना चाहूंगी इन्हीं आयतों पे गौर करते हुए। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिरिदाका मिन सखतिका व बि मुआफातिका मिन उकूबतिक। ए अल्लाह, मैं पनाह में आती हूँ आपकी रजा की आपकी सख्ती से, यानी आप मुझे पकड़े ना, बल्कि आप मुझसे राजी हो और मेरे साथ माफी का मामला करें, ना कि अकूबत का। तो ये दुआ पढ़ा करें, क्योंकि हम में से कोई पाक नहीं है, किसी को नहीं पता किस चीज पे कल पकड़े गए तो वहां क्या हाल हो जाएगा। फिर कुरान पाक से इन आयात में से रहनुमाई क्या मिल रही है, दीन पर मजबूती से अमल करना। जमा हुआ मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर है। अल्लाह के नबी की वो हदीस भी याद कर लें कि एक कवी मोमिन होता है और एक कमजोर होता है, भलाई दोनों में है, लेकिन अल्लाह को मजबूत मोमिन पसंद है। मिसाल दे दूं तो अबू बकर रकीक थे, सॉफ्ट थे, उमर में शिद्दत थी सख्ती थी। खिलाफत पहले अबू बकर को मिली रजी अल्लाह अन्हो, लेकिन साहब इल्हाम शख्स उमर को कहा गया, तो हजरत उमर की इस मजबूती ने इस्लाम को मजबूत कर दिया। तो अपने अंदर मजबूती लाइए, अपने नफ्स को स्ट्रॉन्ग कीजिए। ऐसे नहीं कि छोटी सी बात सुन के पढ़कर आप मुश्तैल हो गए, गुस्से में आ गए। फिर अगला नुक्ता नोट कीजिए, हसद की वजह से हक की मुखालफत पर हट धर्मी से बचना है। ये तो अंदर की बातें होती है ना, आपको खुद भी नहीं कभी पता होता, तो अल्लाह से दुआ करें कि मुझे हट धर्मी से बचा दे। फिर आगे, जुल्म और हसद दरअसल तकबर की वजह से है, तकबर से बचना है। और यहाँ एक जुमला लिखिए, जब तकबर आने लगे तो तकबीर कहिए। और तकबीर क्या है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जब आपको अपना बड़ा लगे ना, तो फौरन अल्लाह को बड़ा करें, वरब्बक फकब्बिर पे अमल कीजिए। गौर व फिक्र के गोशे लगातार शक और काफिराना अमल अल्लाह के गजब को ले आते हैं। कभी ना कभी बंदे के दिल में कोई डाउट आ सकता है, कोई टंग स्लिप हो सकती है आपसे, कोई कह लीजिए ईयर स्लिप हो सकती है, कान ने कोई चीज सुन ली, आपकी आई स्लिप हो सकती है, आंख ने कोई चीज देख ली, लमम बन जाता है सूरत नजम में हम पढ़ेंगे, फौरन औज़ बिल्ला पढ़ के माफी मांग लें। लेकिन मुस्तकिल अगर आप गलत काम करेंगे तो अल्लाह का गजब जरूर आएगा। फिर अंबिया कराम के हर हुक्म और अमल की इज्जत करनी है। ये नहीं कहना कि अच्छा ये अल्लाह के नबी ने कहा फिर रहने दो, हाँ कुरान में लिखा है फिर तो अमल करना पड़ेगा। कुरान के अहकामात को सिर्फ सुनना नहीं बल्कि कबूल करना और उनकी इताअत करना। बोलिए, समेना व अतोना। जाहिल और नादान का उजर कबूल हो सकता है, हट धर्म का नहीं। अल्लाह मुझे आपको हट धर्मी से बचाए। आगे आयत 94 से 101, قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ। बहुत ही प्यारी आयतें हैं, आइए देखते हैं। आप कह दीजिए, अगर आखिरत का घर सिर्फ तुम्हारे ही लिए है, अल्लाह के नज़दीक और किसी के लिए भी नहीं है, तो अपनी सच्चाई के सबूत में मौत तलब करो। लेकिन अपनी करतूतों को देखते हुए कभी भी मौत नहीं मांगेंगे, अल्लाह ताला जालिमों को खूब जानता है, बल्कि सबसे ज्यादा दुनिया की जिंदगी का हरीस है नबी, आप इन्हीं को पाएंगे। ये हिरसे जिंदगी में मुशरिकों से भी ज्यादा हैं, इनमें से तो हर शख्स एक एक हजार साल की उम्र चाहता है, गो ये उम्र दिया जाना भी इन्हें अजाब से नहीं छुड़ा सकता। अल्लाह ताला इनके कामों को बखूबी देख रहा है। यहाँ पे कुछ लंबी उम्र की बातें हैं। तो पहली बात तो नोट कीजिए कि कुछ लोग नेकी के दावेदार होते हैं लेकिन फिर भी मौत से डरते हैं। आपको एक छोटा सा टेस्ट दूं, क्या आप मरने के लिए तैयार हैं? क्या आपको मौत के लफ्ज से वहशत तो नहीं होती? क्या लफ्ज मौत के साथ आप डिप्रेशन में तो नहीं चली जाती? तो फिर गड़बड़ है। देखिए, असल बात तो अल्लाह को पता है, ये तो एक सोच देने के लिए आपको बात बताई जा रही है। अगर आप वाकई रेडी हैं, इफ यू आर रेडी टू मीट अल्लाह सुबहाना ताला, मन अहब लिका अल्लाह अहब अल्लाह लिकाहु, तो फिर आप मौत का सोचेंगे तो मजा आएगा, इंजॉय करेंगे। सहाबा करम ऐसे ही थे, उनको अपनी मौत के लिए तैयारी करने के लग से जरूरत नहीं थी। किसी भी सहाबी का कॉल है, वो कहते हैं कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है तो मेरे अमल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि वो पहले से ही 100% रोज इस सोच के साथ गुजारे हैं कि मैंने चले जाना है, यही तकवा का आला दर्जा है। तो यहाँ लिखिए, अपनी जिंदगी के लिए कोई प्लान बनाइए और इसमें कोई बड़ा नेक अमल करने का हिस्सा रखिए जो आपको आखिरत का मुश्ताक बना दे, यानी कोई ऐसी नेकी करे जिसका रिजल्ट लेने के लिए आप बेचैन हो। मोमिन जान जिंदगी भर नेकियां करता रहता है और आगे भेज रहा है, आगे भेज रहा है। ऐसे जैसे आप सऊदीया में खूब शॉपिंग करें और फिर उसको बांध बांध के रख रहे हैं कहाँ, बैक होम के लिए, तो क्या दिल करेगा जहाँ वो डब्बे और बॉक्सेस और पहुंच चुके हैं सामान में, वहां जल्दी पहुंचू। तो जहाँ चीजें होती है ना, दिल वहां लगता है। आखिरत में चीजें जाती जाएंगी, दिल वहां लगेगा। इसी तरह अल्लाह ताला से दुआ मांगिए कि आपका खात्मा बिलखैर हो, आपको अल्लाह ताला से मुलाकात का शौक हो मोहब्बत इलाही की वजह से, ना कि किसी तकलीफ दे मुशक्कत या गुमराह कुन फितने की वजह से। इसी तरह से आपका मेरा काम क्या है इन सारी आयतों को पढ़ने के बाद, कि अपनी जिंदगी का हर दिन ये सोचकर गुजारिए कि ये आखिरी दिन है। और फिर उसके बाद आगे एक और मौजू आ रहा है, ऐ नबी आप कह दीजिए कि जो जिब्राइल का दुश्मन हो, जिसने आपके दिल पर पैगामे बारी ताला उतारा है, जो पैगाम इनके पास की किताब की तस्दीक करने वाला और मोमिनों को हिदायत और खुशखबरी देने वाला है। इस पे एक नोट लिख लीजिए, कुरान का नजूल कल्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह ताला ने सूरत हशर में एक मिसाल दी है, वलो अनजल नहाजल कुरान अला जबलिल रईतहु खाशिया मुतसद्दिया मिन खशियतिल्लाह, अगर इस कुरान को हम किसी पहाड़ पे नाजिल कर देते तो वो खशियत से कांपने और थराने लगता। पहली मिसाल। अल्लाह ताला ने सूरत अल अहज़ाब के आखिरी आयत में क्या फरमाया, इन्ना अरदनल अमानता, बेशक हमने अमानत को पेश किया आसमानों जमीन पे, लेकिन वो डर गए, किसको उठाएं। इन दो आयतों को जमा कर लीजिए और अब अल्लाह के नबी को जहन में लाइए, कितनी खूबसूरत पर्सनैलिटी थी मेरे प्यारे नबी की, मोहब्बत महसूस करें। वो चीज जिसको पहाड़ ना सह सके, कांपने और थर्राने लगे, वो चीज जिसको आसमानों जमीन ना थाम सके, वो कल्बे मोहम्मद ने थाम ली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी पर जब वही नाजिल होती थी तो आपकी कैफियत बहुत सख्त हो जाती थी, तकलीफ वाली, बोझल हो जाते, आप ऊँट सवारी से हट जाते, आपकी एक एक रान वसनी होती थी। तो आज आप पर मैं इस कुरान को इतना हल्का कैसे ले सकते हैं? मैंने पढ़ाना होता है, मुझे हर रोज लग रहा होता है कि मुझे बुखार है, मेरी जुबान नहीं खुलती, मैं अल्लाह से रो के दुआ करके बैठती हूँ इस जगह पे कि अल्लाह आपका कलाम है, आपकी बात है, इसमें मेरे नफ्स की ना डल जाए, किसी शैतान की ना डल जाए, कोई मेरे हालात, किसी मेरी जिंदगी की परेशानी की फिक्र ना डल जाए, मेरी कोई बेअमली ना इस कुरान में पढ़ाते हुए डल जाए। अल्लाह आप कहलवा दीजिएगा और वो कहलवाइएगा जो आपकी नज़र में ठीक है, और वहाँ रोक दीजिएगा जो बात उससे बड़ी भी होगी। ये आसान नहीं है। और आप सबको भी कहूँगी, आप इस शहर के खुशकिस्मत तरीन लोग हैं इस वक्त मेरी नज़र में। अल्लाह ने आपको चूज़ किया है, आपको इस कलाम के अखज़ के लिए लिया है, तो क्या ये नाशुक्री नहीं होगी कि हम कभी आए कभी ना आए, देर से आए जल्दी जाएं या ना आए? ठीक है, डे वन से लेके डे एंड वाले तो परफेक्ट अटेंडेंस वाले ही हैं, जो एक दफ़ा जिस दिन से आ जाता है उसकी वहां से भी शुरू करें तो परफेक्ट ही बनती है, कोई दुनिया की रुकावट ना रोके। और आप अपने प्यारों, अपनी दोस्तों, अपनी सहेलियों और अपने जो भी जानने वाले, उनको क्या पैगाम देते होंगे, मुझे पता है। बेचैन हो जाता बंदा, अच्छी चीज अकेले तो खाई नहीं जाती। बेटियां जिनकी इतनी फिक्रें लगी हैं कि हाय अच्छे घरों में जाएं, वहां ठीक रहें, उन सब के लिए ये कुरान है। तो अल्लाह ने आपको इस किताब के लिए चुन के लीड बना दिया। चुने हुए लोग, अल्लाह आपको मुझे इसका हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। इसलिए फरमा दिया कि ये नबी के दिल पे नाजिल हुआ। अल्लाह इसको हमारे भी दिलों पे नाजिल कर दे। दिल से बात ना निकले, दिल में जाती नहीं है। जो ऊपर से मुंह की बातें होती है ना, वो ऊपर ऊपर ही रहती हैं। तो जो दिल में दर्द होता है ना, आवाज़ में वही भरता है। और जो आवाज़ में दर्द आता है ना, वो झूठा नहीं हो सकता कभी भी। तसन्नो वाली बात का भी पता लग जाता है। तो अल्लाह ताला आपको मुझे इस किताब के साथ ऐसे जोड़ दे कि हमें महसूस हो कि ये हमारे दिलों पे उतर है। और सहाबा कराम की कैफियत उस महफिल में क्या होती थी कि बिल्कुल डूब जाते हैं उसके अंदर, परिंदे आपके सरों पे बैठ जाते हैं। कोई 19वीं की चीज़ भी होगी तो उसको भी दूर कर देंगे इंशाल्लाह।